मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 29 दिसंबर 2015 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इस बीच में 5 दिनों के गैप के बाद आज हम डेली ऑडियो गाइडेंस के माध्यम से मिल रहे हैं। हालांकि कल आप लोगों ने मंडे का जो ऑडियो फॉर एक्सलेंस दिया गया था वह डेफिनेटली सुना होगा और मुझे उस ऑडियो के बारे में आप लोगों के फीडबैक की प्रतीक्षा भी रहेगी। कुछ फीडबैक मुझे मिले हैं जो काफी उत्साहवर्धक रहे हैं, फिर भी प्रतीक्षा लगातार बनी रहेगी। दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है और इसी के साथ ही मुझे आज उन अपने 24 नौजवान साथियों का भी स्वागत करने का मौका मिल रहा है जिन्होंने एकेडमी की अभी जो फरवरी में क्लासेस होने वाली हैं उनके लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन 24 नौजवान साथियों के नाम हैं शंभुनाथ यादव दिल्ली से, अविनाश शर्मा अलवर राजस्थान से, अतुल तिवारी रीवा मध्य प्रदेश से, मोहम्मद सिदान पटना से, मोहम्मद रिजवान खान इलाहाबाद से, सुरेंद्र पाल लखीमपुर खीरी से, धवल जे चाहर राजकोट गुजरात से, खान अफजल रहमान मुंबई से, अभिजीत विनायक जगताप सांगली महाराष्ट्र से, राजू कुमार बेगूसराय बिहार से, केडी सरोज दिल्ली से, पवन कुमार आप हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से, रंजन कुमार सिंह सुपाल बिहार से, अभिनेंद्र सिंह चौहान ग्वालियर मध्य प्रदेश से, जितेंद्र कुमार दिल्ली से, दीपिका साहू रायगढ़ से, प्रियांशु मिश्रा कानपुर से, नितिन भारद्वाज दिल्ली से, रितेश कानपुर से, श्वेता झा मुंबई से, अमित अनिल चौहान गोंदिया महाराष्ट्र से, दिनेश अंजाना बाड़मेर राजस्थान से और सतीश कुमार शुक्ला रीवा मध्य प्रदेश से। तो एक बार फिर से शंभु, अविनाश, अतुल, मोहम्मद सिद्दान, मोहम्मद रिजवान, सुरेंद्र, धवल, अफजल रहमान, अभिजीत विनायक, राजू, केडी सरोज, पवन, रंजन, अभिनेंद्र, जितेंद्र, दीपिका, प्रियांशु, नितिन, रितेश, श्वेता, अमित, दिनेश और सतीश, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब यह साल खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए हैं और ठीक इसी तरह से अब कुछ ही दिन अगली क्लासेस के भी लगने के रह गए हैं। ज्यादा वक्त नहीं बचा है और मैं चाहूंगा कि मेरे नौजवान साथी पूरे तैयारी के साथ आएं, मुस्तैदी के साथ आएं, अपनी पात्रता को करेक्ट करके आएं, उसके अनुकूल बन करके आएं और आप देखेंगे कि आप यहां से कितना कितना लेकर जाते हैं। दोस्तों, ये मेरे केवल कहने की बात नहीं है, 3 बैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, चौथे बैचेस में आपकी तैयारी है। आप उन 3 बैचेस में जो स्टूडेंट यहां से क्लासेस अटेंड करके गए हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, बात करना ही चाहिए और फिर आप सही सही आप सच पूछे तो मूल्यांकन कर पाएंगे कि ये क्लासेस आपके लिए किस तरीके से और कितनी उपयोगी हो सकती हैं और आपको मूल्यांकन करना भी चाहिए। दोस्तों, अभी अभी आपको मालूम है कि मेंस के एग्जाम हुए हैं सिविल सर्विस परीक्षा के और ऐसे बहुत से स्टूडेंट थे जो मेंस में अपीयर होने जा रहे थे लेकिन उन्होंने क्लासेस अटेंड की। उसमें से दो स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन आए हैं, जिसमें एक संजीव थे जिनके बारे में मैंने इससे पहले भी डिटेल में आपको बताया था कि किस तरह से क्लासेस चल रही थी और पिता का निधन हो गया। वे गए, अंतिम संस्कार में उन्होंने किया, उसमें भाग लिया और इसके बाद फिर से वो क्लास अटेंड करने आए थे, उनकी चर्चा मैंने की थी, उनका फोन आया। और एक अनुषा अग्रवाल हैं, उनका भी फोन आया था। ये दोनों प्री क्वालिफाई कर चुके हैं इससे पहले और फिर से मेंस में अपीयर हुए थे और फोन पर बहुत डिटेल में उन्होंने ये बात बताई कि इस क्लास को अटेंड करने से उन्हें कितना कितना अधिक फायदा हुआ है। और पहली बार शायद उनका जो इंप्रेशन था वो ये कि प्रश्न को उस तरीके से समझने और लिखने में उन्हें मदद मिली है। मित्रों, ये मेरे कहने की बात नहीं है, इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो वीकली क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो ऑलरेडी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जो प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं वो ऑलरेडी पहले की भी वहां अवेलेबल हैं और साथ ही साथ जो ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है वह भी पहले से ही मौजूद है, वो बाद में बना करके देने की वहां कोई संभावना नहीं है और आप उनको अनसॉल्व्ड पेपर से मैच कर सकते हैं। आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि सही मायने में ये क्लासेस कितनी उपयोगी आप लोगों के लिए हो सकती हैं। ये जरूर है दोस्तों कि ये कितनी उपयोगी होती हैं ये मुझ पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, सबसे ज्यादा निर्भर करता है आपके अपने ऊपर। सारी चीजें सच पूछे तो आपके अपने ऊपर ही निर्भर करती हैं। तो मित्रों, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से ये अपील करता हूं कि अपनी पात्रता को आप बढ़ाएं। जितनी आप अपनी पात्रता को बढ़ाएंगे, यानी कि अपने हाथ में जितना बड़ा पात्र लेकर आएंगे, आप उतना ही अधिक यहां से लेकर जा पाएंगे। और दोस्तों, हम सब केवल यही कर सकते हैं। हमारा ध्यान पूरी तरह से देने वाले पर होता है। मेरी अर्ज है, मेरा अनुरोध है, सलाह है कि लेने वाले को भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी वह सही मायने में लेने के अनुकूल बन सकेगा। मित्रों, आप लोगों से मैंने वायदा किया था कि लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग बाजीराव मस्तानी के बारे में बात करेंगे और काफी विस्तार से बातें करेंगे, काफी डाइमेंशंस के आधार पर बातें करेंगे। और अभी मैं जिस पात्रता की बात कर रहा हूं, चलिए उसकी शुरुआत हम बाजीराव मस्तानी से ही करते हैं और इसी के साथ ही बाजीराव मस्तानी के फिल्म पर भी शुरुआत हो जाएगी। आप बिल्कुल फिल्म की शुरुआत पर चले जाइए। चयन किया जाना है कि किसे पेशवा बनाया जाए। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। आपको मालूम है कि जो शासक होते थे, जो मराठा सरदारों को छत्रपति कहा जाता था और प्राइम मिनिस्टर पेशवा कहलाते थे, नेक्स्ट टू आप कह सकते हैं किंग। आप देखते हैं, आप उस सीन को याद करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल शुरुआत में ही है। एक व्यक्ति अपना दावा पेश करता है लेकिन दूसरे व्यक्ति का भी फिर दावा आता है। अब सवाल यह होता है कि कैसे समझा जाए कि यह व्यक्ति मराठा साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनने लायक है या नहीं। दोस्तों, इस बात की चर्चा यहां मैं जानबूझकर कर रहा हूं। इसके पीछे मेरा मकसद है और मैं समझता हूं कि बहुत सही और शायद बहुत पवित्र मकसद भी है। मकसद इस मायने में कि जब भी हम अपनी जिंदगी में दूसरों को, सफल लोगों को देखते हैं तो मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव आता ही है। ईर्ष्या का भाव इस मायने में कि काश हम भी होते, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं कि कोई दुराग्रह है, लगता है कि यार काश इसकी जगह हम भी होते। जब हम देखते हैं कि आईएएस में सेलेक्ट हो गया तो लगता है कि काश हम भी सेलेक्ट हो जाते। एक एक्टर और एक्ट्रेस या किसी खिलाड़ी को जब बहुत सफलताओं की ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ देखते हैं तो लगता है यार कि काश हम भी ऐसे खिलाड़ी बन जाते या हम भी ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस बन जाते और हमारी भी फॉलोइंग इतनी ज्यादा होती, हमारे भी लोग फैन होते, हमारा भी ऑटोग्राफ लिया जाता, हमारे बारे में भी अखबारों में लिखा जाता, हमारे चारों तरफ भी लोगों की भीड़ होती। ये किसको अच्छा नहीं लगेगा? हम सब भौतिक जगत में रहते हैं, संत महात्मा साधु वैरागी नहीं है, अच्छा लगता है और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। लेकिन वहां मित्रों, जो सबसे बड़ी बात है जिसको हम अक्सर मिस कर देते हैं, जानते हुए भी मिस कर देते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, हम जानते हुए भी जिसको मिस कर देते हैं, वो ये कि ये जो यहां तक पहुंचे हुए लोग हैं इसके पीछे कितनी लंबी और कठिन साधना है, कितनी बार चढ़ चढ़ करके गिरने की यातना है, ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह है कि आप पता लगता है कि धीरे धीरे एक एक दो दो नंबर जुटाते 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 96-97 तक पहुंचते हैं, केवल 2-3 नंबर तक और पहुंचना बाकी है कि आप बाजी जीत जाएंगे। लेकिन पता लगता है कि 96 के बाद एक आता है, 97 में पहुंचते हैं और 97 में एक सांप अपना मुंह फाड़े हुए मौजूद है और वो आपके उस पहुंच को निगलता है और आपको सीधे 3-4 पर पहुंचा देता है। हम नहीं समझ पाते कि इस यातना के दौर से वो कितनी बार गुजरे होंगे। ये कहानियां हमारे सामने नहीं होती, लेकिन जो सफलता का ताज होता है, जो ऊंचाइयों का जो दृश्य होता है, वो हमारे सामने जरूर होता है, क्योंकि समाज को मतलब जो होता है वो सिर्फ किसी सफलता से होता है। असफलताओं को समाज ने कभी नहीं पूजा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूजा है। इसको लेकर के मैंने एक किताब ही लिखी है, असफल होना सीखें, और मैं समझता हूं कि वो एक अलग तरीके की किताब है। उसमें मैंने स्थापित किया है कि जो असफल नहीं होना होने की कोशिश करेगा, जो नहीं हो सकेगा, होने का साहस नहीं रख सकेगा, उसको सफलता के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। और मैंने उसमें यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया कि इसे हिंदुस्तान ने या पूरी की पूरी दुनिया ने ऐसे लोगों को सफल लोगों से भी ज्यादा तरजीह दी है जो असफल हुए हैं। सवाल सफल और असफल होने का उतना नहीं होता है, सवाल इस बात का होता है कि हम अपनी सफलताओं और अपनी असफलताओं के बाद के माध्यम से कह लीजिए कि जो मापदंड स्थापित करते हैं वो क्या है, कैसे हैं, उनसे समाज का कितना भला हो सकता है, वो समाज का कितना दिशा निर्देशन करते हैं। महत्वपूर्ण बात ये होती है। मैं चाहूंगा कि आप सब देखें, अगर यह किताब अगर आपको मिल जाती है तो आप जरूर पढ़ें। यह आपके अंदर सफलता और असफलताओं को देखने की एक नई दृष्टि देगी, और सच पूछिए तो उससे भी बड़ी बात कि आपके अंदर एक ताकत पैदा करेगी, साहस पैदा करेगी। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात होती है अपनी पात्रता को सिद्ध करना, और सच पूछे तो सिविल सर्विस की आप जो तैयारी कर रहे हैं वह भी एक तरीके से आप अपनी पात्रता ही सिद्ध करना चाहते हैं यूपीएससी के सामने या भारत सरकार के सामने कि मैं इसके लायक हूं। लेकिन मित्रों, इससे ठीक पहले की भी एक पात्रता होती है, और वो ये होती है कि मैं इसकी तैयारी करने के लायक भी हूं, इसकी भी एक पात्रता होती है। आपने देखा कि बाजीराव मस्तानी में पेशवा बाजीराव के दो चरण हैं। पहला चरण है कि वो ये सिद्ध करते हैं कि मैं पेशवा बनने लायक हूं, और आपको ध्यान होगा कि उनको उनकी परीक्षा ली जाती, भरी सभा में परीक्षा ली जाती है कि ये जो मोर का पंख है इस पर तुम तीर चलाओ, और इस तरीके से तीर चलाओ कि उसका ऊपर का हिस्सा कटकर अलग हो जाए और नीचे का हिस्सा बना रहे, और वो तीर चलाते हैं। उस दृश्य को याद कीजिए, उस दृश्य का वर्णन करने का कोई विशेष मतलब नहीं है। और इसके बाद साथ ही साथ उनसे यह भी पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है, मतलब एक साथ दो परीक्षाएं हैं, एक तो निशानेबाजी की परीक्षा है, यानी कि यह वीरता है, शारीरिक वीरता क्षमता, क्योंकि उनको सेनापति का रोल प्ले करना है। तो जब तक आप में वो युद्ध कौशल नहीं होगा आप सेनापति बनने के लायक नहीं होंगे। लेकिन केवल युद्ध से ही बात नहीं बनेगी, हर कौशल के साथ साथ मस्तिष्क की क्षमता जुड़ी होती है। मस्तिष्क के रूप में भी आपके पास इतना ब्रिलियंट माइंड होना चाहिए जो तुरंत निर्णय ले सके, चीजों को बदल सके, उनको अलग नजरिए से देख सके। तो उनसे एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि तुम इसका उत्तर बताओ, और आप देखते हैं कि पेशवा बाजीराव कितनी खूबसूरती के साथ इन दोनों के जवाब देते हैं। वो तीर भी साधते हैं और साथ ही साथ जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बड़े सटीक जवाब भी देते हैं। और जैसे ये होता है, सभा आश्चर्यचकित रहकर एक मत से उनको वह पद प्रदान कर देती है। तो मित्रों, ये पहला चरण हुआ कि उनको वह पद मिला। इसके बाद जो दूसरा चरण होता है कि उन्होंने ये बात में चलकर सिद्ध किया कि मैं इसके काबिल था। उन्होंने फिर जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उन सभी लड़ाइयों में उनको जीत हासिल हुई, और आप देखते हैं कि वहां उन्होंने कैसे अपने यौद्धिक कौशल का परिचय दिया, रणनीति का परिचय दिया, युद्ध नहीं हारे। तो आप देखते हैं कि कितना जबरदस्त मानसिक और व्यक्तित्व का संतुलन उनके अंदर मिलता है। और दोस्तों, आज वक्त नहीं है, हमें इस पर कई एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जब तक कि आप लोग थक नहीं जाएंगे, या कह लीजिए कि जब तक हमारी जरूरत खत्म नहीं हो जाएगी, हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि जिस संतुलन की मैं बात कर रहा हूं, उन कितने जबरदस्त संतुलन के प्रमाण उन्होंने वो पेश करते हैं, साथ ही साथ कि किस तरीके से वे अपने जीवन में जो एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स होते हैं उनको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट में इतना ही। अब हम लोग आते हैं कल के AIR न्यूज के ऊपर। दोस्तों, जहां तक न्यूज का सवाल है, तीन खबरें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें दो खबरें सिविल सर्विस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक खबर सामान्य सी है जो कंटेंट के रूप में जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और उस दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। पहली जो खबर है, आपने देखा है कि चुनाव आयोग ने स्टेटमेंट दिया है कि वो इस बात से सहमत है कि हमारे देश के जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं वे एक साथ होने चाहिए। आपको ध्यान होगा कि पहले इसकी हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी जब ये बात खबर में आई थी, जब एक समिति ने अपने रिकमेंडेशन में ये कहा था कि इस तरीके से होना चाहिए। मित्रों, जब हम लोगों ने होश संभाला, ये लगभग 65-70 की बात है, उस समय लगभग स्थितियां यही थी। देश आजाद हुआ था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं थी, कांग्रेस हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, केंद्र में भी उसका शासन था और राज्यों में भी उसी का शासन होता था। तो स्थिति यह होती थी कि लोकसभाएं और राज्यसभाएं एक साथ ही बनती थी और एक साथ ही उनका सत्र भी, उनका जो टर्म है, समय है, कार्यकाल, वो पूरा होता था और स्वाभाविक तौर पर फिर दोनों चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन धीरे धीरे इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो बदला, कांग्रेस कमजोर पड़ने लगी, दूसरी पार्टियां धीरे धीरे मजबूत होने लगी और खासकर जब क्षेत्रीय पार्टियां इमर्ज होकर के जब उन लोगों ने राज्यों पर अधिकार कर लिया तो केंद्र में आप देखते हैं कि फिर कॉलिशन गवर्नमेंट जैसी स्थितियां बन गई, फिर राज्यों में कभी सरकार बन रही है, कभी गिर रही है, अदला बदली हो रही है, मतलब केंद्र और राज्य की सरकार के कार्यकाल का जो तारतम्य था वो एक तरह से विच्छिन्न सा हो गया, टूट गया। इसके बाद लगातार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, जहां तक उपचुनाव की बात है, चाहे राज्यों के हों या केंद्र के हों, तो उपचुनाव तो होते ही रहते हैं और होते ही रहेंगे, उन पर आप कोई नियंत्रण नहीं रख सकते, क्योंकि जो सांसद हैं उनके साथ क्या स्थितियां होती हैं, त्याग पत्र देते हैं, किसी का निधन होता है, किसी कोई दूसरे पद के लिए अपॉइंट हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि किसी को राष्ट्रपति बना दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया या और कुछ कर दिया गया, तो पद खाली होते रहते हैं और वहां चुनाव होते रहते हैं। इस पर तो कुछ रोक नहीं लगाई जा सकती, ना कुछ व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन जहां तक लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ हों, इस पर अब एक सोच शुरू हो गई है। उसके पीछे नो डाउट कि कुछ कारण हैं और जो सबसे बड़ा कारण है सच पूछिए तो वो है इस पर होने वाला खर्च। अगर दोनों एक साथ करा दिया जाए तो हमारा देश बहुत बड़े खर्च से बच सकता है, चुनावी खर्च से बच सकता है। तो इस पर मुझे लगता है कि चूंकि चुनाव आयोग ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है और इस काम को पूरा संपन्न करने का जो दायित्व तो है वो चुनाव आयोग पर है, तो इस पर अब एक बहस की शुरुआत होगी। और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ है और एक नई बहस भी है, इसीलिए मेरी सलाह है कि आप सब इस बहस को बहुत ध्यान से देखें, समझें और इस पर बहुत अच्छे से तैयारी करते जाएं और जो इसके पक्ष विपक्ष में जो भी आपको पॉइंट्स मिले उन्हें एक जगह नोट भी करते जाएं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी डायरी में या रजिस्टर में इसके लिए कुछ पन्ने सुरक्षित कर ले, ताकि अच्छी सामग्री, ठोस सामग्री, तार्किक सामग्री, अच्छे डेटाज, अच्छी रिपोर्ट्स, अच्छे ओपिनियंस उसमें एकत्रित होने लगे। मित्रों, जो दूसरी इंपॉर्टेंट खबर थी वो विजय केलकर समिति की रिपोर्ट की खबर थी। ये बहुत ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आपको चाहिए कि आप कुछ पेजेस तैयार कर लें। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कही हैं, मैं न्यूज के आधार पर ये बात कह रहा हूं, अभी तो अखबारों के जरिए, मैगजीन्स के जरिए आपको और डिटेल्स में जानने को मिलेंगे, क्योंकि ये इसका संबंध हमारे देश की अर्थव्यवस्था से है, केलकर समिति का रिपोर्ट, और खासकर देश की अर्थव्यवस्था से कोई बहुत ही सैद्धांतिक अर्थव्यवस्था से नहीं है, बल्कि जो एक उस अर्थव्यवस्था के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं, जो अप्लाइड फॉर्म है, उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट दी है। जैसे न्यूज की शुरुआत में ही PPP मॉडल की बात कही गई थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। आप देख रहे हैं कि जब ये मॉडल की शुरुआत की गई थी तो हमारा देश बड़ा उत्साही था और लग रहा था कि इससे कम से कम एक बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको कोई अकेला नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता तो सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर के उसे अंजाम दे सकेंगे। जैसे कि अभी तक आजादी के बाद का जो हमारा विकास रहा है उसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं जाना चाहते। उसके दो कारण होते हैं, पहला तो यह है कि उसमें पूंजी बहुत ज्यादा लगती है, दूसरा कारण यह कि उसमें वक्त भी बहुत ज्यादा लगता है, और तीसरा मान लीजिए कि जितनी पूंजी लगती है और जितना वक्त लगता है उसके अनुसार उसके अनुकूल उसके रिटर्न नहीं मिलते हैं, और रिटर्न भी बहुत धीरे 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 आता है। तो बट नेचुरल है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं इसके अतिरिक्त किसी दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा पूंजी लगाना चाहेंगे, दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा जाना चाहेंगे। इसके हल के तौर पर पीपीपी मॉडल लाया गया, कुछ काम भी शुरू हुए। जैसे सड़क का क्षेत्र ले लीजिए तो सड़क में सरकार ही काम करती थी, सड़क बनवाने का, बांध सरकार ही काम करती थी, नहर सरकार ही काम करती थी, तो इस तरह से कुछ क्षेत्र थे और ये जो जितने भी क्षेत्र थे इनका संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा था और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे। तो एक बहुत अच्छी नीति के तहत ये पीपीपी मॉडल आया था, लेकिन पिछले लगभग आप कह लीजिए कि हमारे पास जो 15-20 साल का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा नहीं है, एक तरह से फेल सा होने लगा। उसके बहुत से रीजन हैं, आप सब जानते भी होंगे, हमने डेली ऑडियो में इसकी चर्चा भी की है कि धीरे धीरे काम होता था, पूंजी की कमी होने लगती थी, चूंकि रिटर्न देरी से आता था तो उस पर लोग बहुत इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे, कुछ मामलों को लेकर के डिस्प्यूट भी हो जाते थे। जैसे मान लीजिए कि लैंड एक्वायर करना है तो वो आसानी से नहीं हो रहा है, वो विवाद में पड़ गया, तो इस तरह से ढेर सारी बातें उसके साथ ही जुड़ी। तो लगभग बहुत से आज हमारे प्रोजेक्ट हैं इसी मॉडल के तहत जो आज अधूरे पड़े हुए हैं। अधूरे पड़ने के कारण पता लगा कि बैंक का भी उसमें पैसा फंसा हुआ है, वो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं है, तो बैंक भी प्रभावित हो रहे हैं और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी चीजों में जो होना चाहिए था वो तो ऑलरेडी रुका हुआ है। इस पर केलकर समिति ने जो अपनी बातें कही हैं, एक दो बातें, और मैं समझता हूं कि इस समिति की रिपोर्ट की बहुत अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, उन्होंने यही कहा कि पीपीपी मॉडल में की जो कमियां हैं और उस मॉडल के जो खतरे हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पहचाना जाना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि कैसे उन खतरों को दूर किया जाए। पहले भी इसके बारे में बातें हुई हैं और जिसमें यह कहा गया है कि उसका जो रिस्क का जो ओरिएंटेशन है वो गवर्नमेंट को अपने पास रखना चाहिए ताकि प्राइवेट वाले आकर के उसमें पूंजी लगा सके। फिर उन्होंने यह भी रिपोर्ट में कही है कि आवंटन बहुत बेहतर तरीके से हो, चाहे वो धन का आवंटन हो, प्रॉफिट का आवंटन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आवंटन हो, जोखिम का आवंटन हो, यह बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए, मतलब एक बैलेंस तरीके से होना चाहिए, वो एक तरफा ना हो। ठीक इसी तरह से उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा जोर आधारभूत संरचनाओं को क्रिएट करने में होना चाहिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको तैयार करने में इस मॉडल का सबसे अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, और फिर वो व्यावहारिक दृष्टि की बात करते हैं। तो मित्रों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी विजय केलकर समिति की रिपोर्ट, और ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए जो रिकमेंडेशन है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उन रिकमेंडेशन पर आपको नहीं जाना है, न याद करने और रटने की जरूरत है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशंस होती हैं जिनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है केवल उन्हीं पर आपको ध्यान देना है। मित्रों, इसके बाद एक छोटी सी खबर थी जो एक कंटेंट के तौर पर आप ले सकते हैं, टॉपिक के तौर पर नहीं, वो ये कि 10 लाख रुपए से ज्यादा आय के जो लोग होंगे उन्हें अब गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, और हमारे देश में लगभग 16.5 करोड़ लोग गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की एक अच्छी नीति है। देखिए, जो सब्सिडी का जो सिद्धांत जो लाया गया है वो खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए है, लेकिन ये फैलता धीरे धीरे कह लीजिए कि दूसरे सेक्टर में भी आम लोगों के लिए हो गया है। एक सिलेंडर में दोस्तों लगभग 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। एक परिवार को साल में 12 सिलेंडर लेने होते हैं जो उसके माध्यम से मिलते हैं, तो 12 × 2 = 2400 रुपए का की सब्सिडी अगर कोई धनी व्यक्ति भी है तो वो ले सकता है। तो एक तरीके से आप कह लीजिए कि 2500 रुपए सरकार उन धनी लोगों से वापस ले रही है जिनकी आय 10 लाख रुपए से अधिक की है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत अन्याय किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे जो एक फिलॉसफी काम कर रही है आप उसको देखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस मायने में है कि हमारी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सी ऐसी छूट हैं या सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम हैं, सामाजिक विकास के कार्यक्रम हैं जो शुरुआत तो बहुत अच्छे उद्देश्य से किए गए थे, या जब शुरुआत की गई थी शायद तब उनका वही मॉडल ठीक था, लेकिन अब आजादी के इतने सालों बाद या उस प्रोग्राम के इतने साल के बाद शुरू होने के बाद डेफिनेटली उसे रिव्यू किया जाना चाहिए, और रिव्यू करने के बाद उसे फिर नया रूप भी देना चाहिए। जैसे इसी से आप जोड़ करके देख सकते हैं जो अक्सर रिजर्वेशन को लेकर के बात होती है कि रिजर्वेशन के इतने साल हो गए हैं तो अब रिजर्वेशन का फायदा मिला नहीं मिला, किन वर्गों को मिला, आगे और किन लोगों को मिलना चाहिए ताकि वो भी अब मेन स्ट्रीम में आ सकें, जो बिल्कुल पीछे छूटते चले जा रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो इस दृष्टि से ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, हेल्थ की बहुत सी योजनाएं हैं, रोजगार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनको एक नए संदर्भों में और नई जरूरतों के अनुसार जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए और उन्हें भी इसी तरह से रिवाइज करना चाहिए। जैसे आप देखें कि शुरुआत जब की गई थी हमारे मनरेगा की, ग्रामीण राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी योजना की, तब शुरुआत में 100 जिलों में किया गया, धीरे धीरे उसको बढ़ा करके पूरे सभी जिलों में किया गया। शुरुआत में केवल 100 दिन के रोजगार की बात हुई, फिर 150 दिन के रोजगार की बात हुई, फिर 200, मतलब इस तरीके से लगातार वो रिवाइज होता जा रहा है। तो ये एक अच्छी नीति है सरकार की जो एक रियलिस्टिक अप्रोच को लेकर चल रही है, और इसमें आपने एक और भी रियलिस्टिक अप्रोच, खासकर गैस सिलेंडर के सब्सिडी के मामले में आपने ध्यान दिया होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपील की थी कि जो स्वेच्छा से छोड़ना चाहें वो अपने सब्सिडी को छोड़ सकते हैं, तो बहुत लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ा भी। तो इसे मैं इस रूप में लेता हूं कि किस तरीके से जनतंत्र में जन का सहयोग भी आवश्यक होता है, केवल सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी, जनता की भी एक जिम्मेदारी बनती है और जनता को चाहिए कि वो सरकार का सहयोग करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन योजनाओं को सफल बनाए। जैसे कि अभी आप दिल्ली में देखिए कि सम विषम संख्या गाड़ी चलाने की बात हो रही है, बड़ी विचित्र सी स्थिति है दोस्तों कि सरकार उसे सफल बनाने की कोशिश में लगी हुई है, जो एजेंसी जुड़ी है वो सफल बनाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन दूसरे तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसको असफल करने के तरीके ढूंढ रहे हैं कि अपने दोनों तरह के नेम प्लेट रख लो, फलाने कर लो, अलग तरीके की चीजें निकाल रहे हैं। वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि सरकार जो कुछ भी कर रही है वो उन्हीं के लोगों के, उन्हीं के लिए कर रही है, उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए कर रही है। केवल उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए नहीं कर रही है बल्कि उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए कर रही है। तो वहां बजाय इसके कि वे सब खुद सामने आकर के इस योजना को सफल बनाए, बहुत से लोग इस योजना को असफल बनाने के काम में लगे, उसमें से रास्ता ढूंढ रहे हैं, तरीके निकाल रहे हैं। तो मित्रों, ये न तो लोकतंत्र का सही तरीका है समझ लीजिए, और यूं भी कह लीजिए कि नहीं, ये हमारी एक राष्ट्रीय या सामाजिक चेतना का प्रमाण है। जहां भी हम अगर मदद नहीं भी कर सकते हैं मान लीजिए, तो कम से कम बाधा तो न ही बने। तो मुझे ये लगता है कि इस तरीके से जो एक नई शुरुआत जो होने जा रही है नीतियों के तौर पर, उसे उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और आप भी ऐसी घटनाओं को, ऐसे नीतियों को इस रूप में देख सकते हैं। ये एक तरीके से उसको देखने का एक नया मॉडल होगा, नया डायमेंशन होगा। मित्रों, AIR न्यूज के बारे में इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स के ऊपर। एक इस बीच में जो घटना घटी है मित्रों, जो इंपॉर्टेंट घटना है उसकी तरफ मैं आपको, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो यह कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया की यात्रा करके आए, वो एक इंपॉर्टेंट बात है, घटना है, जिसके लिए मैं आपको न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड करवाता रहा हूं। तो उस पर आप ध्यान रखें कि रशिया के साथ जो हमारे समझौते हुए, खासकर डिफेंस के मामले में हुए हैं, और डिफेंस के मामले में भारत और रशिया के बीच में शुरू से ही बहुत एक जबरदस्त, अच्छे और उच्च स्तरीय संबंध रहे हैं। वो एक सफल उनका उनकी यात्रा रही है। इसके बाद लौटते समय वो अफगानिस्तान में रुके, और अफगानिस्तान में रुकने के बाद उन्होंने वहां के संसद भवन का उद्घाटन किया, और ये संसद भवन वह है जो भारत ने अपनी तरफ से बना करके उन्हें दिया है। तो ये हमारे संबंधों में एक नई स्थिति को शो कर रहा है, और साथ ही वही प्राइम मिनिस्टर ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अफगानिस्तान को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी आतंकवाद से मुक्त, एक तरीके से कह लीजिए कि पूरी दुनिया से अपील की कि किस तरह से कि वो आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा हो। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान इससे सबसे ज्यादा परेशान है। और दोस्तों, लौटते समय फिर वो अचानक लाहौर में, अचानक पाकिस्तान में रुके, और उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, 2-2.5 घंटे रहे, बहुत व्यक्तिगत स्तर की भी मुलाकात रही। उन्होंने अपने उनको साफा भेंट किया, आप देखते हैं कि उनकी मां से भी मिले प्रधानमंत्री, उनकी मां के उन्होंने पैर छुए, उनके नातिन की शादी थी उसको उन्होंने आशीर्वाद दिया, और 2.5 घंटे रुकने के बाद वो भारत में आ गए, और इसको लेकर के पूरे देश में एक विवाद खड़ा हो गया। इन सारी की क्लिपिंग्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। मित्रों, यहां आपको एक चीज देखनी होगी और इसको ध्यान भी रखना होगा कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनके पूरे की पूरी फॉरेन पॉलिसी में आपको एक पर्सनल टच दिखाई दे रहा होगा, मतलब व्यक्तिगत स्तर की डिप्लोमेसी, इसको आप कह सकते हैं कि पर्सनल रिलेशन पर बेस्ड डिप्लोमेसी बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशंस। चलिए, एक तो हम डिप्लोमेटिक लेवल पर करते हैं जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों पर बात होती है, और अभी भी जो बात होगी वो राष्ट्रीय हितों पर ही बात होगी। सवाल यह है कि वो बातचीत सही तरीके से हो जाए, सफल हो जाए, कुछ उसका आउटकम निकले, इसके लिए एक भूमिका की जरूरत होती है, एक पृष्ठभूमि की जरूरत होती है, एक वातावरण की जरूरत होती है। जब आप एक सही सद्भाव पूर्ण वातावरण में बातचीत करते हैं, हमारा मानसिक जगत संतुलित होता है, बेहतर होता है, हम एक दूसरे की बात को खुले मन से, उदार दृष्टि से सुनने और सुनाने को तैयार रहते हैं, तभी इन चीजों के कुछ अर्थ भी निकलते हैं। फिर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपसी बातचीत हो या हमारे घरेलू स्तर की ही बातचीत क्यों ना हो, यदि आप बड़े पूर्वाग्रह दुराग्रह के साथ यहां की 15 दिन की क्लासेस में आएंगे तो कुछ लेकर के नहीं जा पाएंगे, और यदि खुले मन से आएंगे, बहुत अच्छे मन से आएंगे, तो आप बहुत कुछ लेकर जा सकेंगे। तो ये व्यक्तिगत स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक यही बात होती है, और मोदी जी इसको बहुत ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने तब से ही कर दी थी जब उन्होंने शपथ लेने के लिए सार्क देशों के, पड़ोसी राष्ट्रों के अपने राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया था। वहां से दिखाई देने लगा था कि वो इसमें व्यक्तिगत संबंधों को बहुत अहमियत देते हैं। फिर हमारे यहां चीन के नेता आए, जापान से आए, और हमारे प्रधानमंत्री यहां तक कि जब दूसरी जगह पर जाते हैं तो ये निजी संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। तो डिप्लोमेसी में एक नया चरित्र दिखाई दे रहा है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मित्रों, जहां तक आज की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं दो क्लिपिंग्स की तरफ आप लोगों का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहूंगा। एक है खासकर यूरोपियन देशों में या विश्व स्तर पर जो एक तरह से दक्षिणपंथी शक्तियां जो उभर रही हैं, उसको लेकर के बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा, और इस पर मैं आगे चल करके कभी आप लोगों से बात भी करूंगा। ये वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो में जो एक नई प्रवृत्ति इमर्ज हो रही है उसको दिखाता है। जो दूसरा आज के प्रेस, दूसरी जो प्रेस क्लिपिंग्स है दोस्तों, खासकर नैरोबी में जो सम्मेलन हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का और दोहा वार्ता को लेकर के, उसके बारे में मैं काफी क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। उसी से रिलेटेड एक और क्लिपिंग्स है राष्ट्रीय सहारा का, वो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, उसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी जो दूसरे क्लिपिंग्स हैं उन सब में मैंने अंडरलाइन कर लिया है, आप लोग देख लेंगे। वक्त की कमी इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि उन पर हम लोग विस्तार से बातें करें। तो मित्रों, अब अंतिम चरण है ईमेल का। नो डाउट कि इस बीच में बहुत सारे ईमेल आए हैं, आप लोगों ने लिखना जारी रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करूंगा। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं हूं या नहीं हूं मायने नहीं रखता है, मायने रखता कि आप हैं। जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है आप उसके प्रति अलर्ट हैं। नॉलेज सेंटर पर तो आपको प्रेस क्लिपिंग्स मिलती ही रही हैं और आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त करते रहे हैं। ये प्रूफ है कि आप सब एक्टिव हैं और आपको चाहिए कि लगातार एक्टिव बने रहें। तो मित्रों, सभी को बहुत धन्यवाद और उन सब के प्रति बहुत बहुत आभार। और इसी में से कुछ मित्रों के मैं नाम ले रहा हूं हमेशा की तरह, वो है रजत बोलपुर से, रत्नेश सिंह इलाहाबाद से, कुंदन नई दिल्ली से, यश शर्मा, किरण मीनू पांडे हैदराबाद से, शांक कोटद्वार उत्तराखंड से, जयदीप प्रगाजी भाई सूरत से, अखिलेश कुमार डेहरिया तिरुपति से, अंशु रुड़की से, पंकज गुप्ता नासिक से, अभिषेक कुमार भोपाल से, मोनिका चौहान मुरादाबाद से, तनुप्रिया सिंह दिल्ली से, रंजीत पटना से, विशाल कदम पुणे से, प्रणव कटारिया अहमदाबाद से, पंकज गुप्ता नासिक से, सोनू चौधरी, पंकज गुप्ता का नाम दो बार आ गया है, इन्होंने दो मेल लिखे हैं, पंकज गुप्ता नासिक से, सोनू चौधरी, शुभम शर्मा न्यू दिल्ली से, अनुराग शुक्ला इलाहाबाद से, संदीप कुमार हरिद्वार से, मनीषा शालिनी सिंह आरती गौर अजमेर से, मिथिलेश कुमार मधुबनी से, संदीप दीक्षित पुणे से, विवेक जयपुर से, और श्रुति मिश्रा, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इतने मेल, जितने भी मेल आए उनमें यदि मुझे बेस्ट ईमेल छांटने का मौका मिले तो डेफिनेटली मैं अंशु जो रुड़की से हैं उनके मेल को छांटना चाहूंगा, और मैंने छांटा भी है, तो अंशु का मेल मुझे सबसे अच्छा लगा है। तो अंशु, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी। तो दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही, मैं इजाजत चाहूंगा, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।